बाबा के अधिकतम बच्चे जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, क्योंकि बाबा का ज्ञान ही गृहस्थ धर्म के लिए है। कई बार मन में ये प्रश्न उठता है, किस तरह लौकिक में रहते हुए जीवन को अलौकिक बनाया जाए। आइए आज इसी विषय पर हम क्लास सुनेंगे। हमारे बीच उपस्थित है अमेरिका से पधारे हुए आदरणीय हमसा बहन जी। हम सभी आपका सभा में बहुत दिल से स्वागत करते हैं। सब एक हाथ की साइलेंस की ताली बजाए, आपका स्वागत है, स्वागत है। आप 40 साल से ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं। 76 में अपने आप को आपने समर्पित किया। भारत के अनेक स्थानों पर राजयोग शिविर कराने के आप निमित्त रहे एवं 1995 से आप विदेश सेवार्थ गए। वर्तमान समय अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत की राजधानी सैक्रामेंटो में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वहां की सेवाओं की एक बहुत खूबी है जो इंटरफेथ एवं गवर्नमेंट की हेल्प से बाबा का मैसेज बहुत अच्छी तरह से फैलाया जा रहा है। बाबा की सेवा अर्थ दो किताबें एवं एक ऑडियो सीडी का स्क्रिप्ट आपने बनाया है। 2014 सितंबर में आपको इंटरफेथ की तरफ से शांति पुरस्कार से नवाजा गया है। सैक्रामेंटो इंटरफेथ काउंसिल के एवं गवर्नमेंट की सुरक्षा विभाग के भी आप कमिटी मेंबर हैं। तो आइए हम क्लास सुनेंगे ऐसी विशेष आत्मा के द्वारा, लौकिक में अलौकिकता कैसे लाई जाए। आदरणीय हंसा बहन जी।
ओम शांति। आज का दिन मीठे प्यारे सद्गुरु बाबा का सद्गुरुवार है। भक्ति में भी गुरुवार के दिन को बहुत महत्व देते हैं और हम सब तो आज सद्गुरु बाबा के दरबार में आके बैठे हैं। आज की मुरली के प्रमाण भी बाबा ने हम बच्चों को यही इशारा दिया कि ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है। अगर आप सबसे भी पूछा जाए तो हरेक को ये पता है ना, ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है। हमारे जीवन में जो हम धारणा करते हैं, जैसे नीलिमा बेन ने बताया कि हम जहाँ रहते हैं सैक्रामेंटो का अर्थ होता है पवित्र प्रसाद। क्रिश्चियन फिलॉसफी में सैक्रामेंटो को प्रसाद कहते हैं। तो वहां पर 700-800 चर्चेस है, बहुत चर्चेस है, तो सबसे हमारा बहुत अच्छा कनेक्शन है। तो वो कहते हैं कि हंसा बेन, आप में और हमारे में क्या अंतर है, क्योंकि जब आप हमारे पास आते हैं तो आप में जो शांति पवित्रता का वाइब्रेशन है वो हम मिस करते हैं, वो हमारे में नहीं है, वो आप में कहां से आया। तो हम यही बताते हैं। कुछ साल पहले हमारे पास से 2-3 सर्जन मधुबन आए थे, तो वो पांडव भवन देखने गए थे, रात रुके थे, और सुबह में मुरली के बाद जब वो नाश्ता करने जा रहे थे तो उन्होंने देखा मधुबन निवासी भाई बहने बहुत शांति से प्यार से जा रहे थे सैर करने के लिए। तो नाश्ता करते हुए उनकी आंखों में पानी आ गया और कहा, बहन इतनी शांति, इतनी धीर्यता से चलना, इतना चेहरे पर सौम्यता होना मैंने कितने सालों से नहीं देखा है। तो कहते यहाँ के लोग ये अलौकिक है, फरिश्ते हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को ये बताया है कि बच्चे जो भी ज्ञान और योग तुम सीख रहे हो उसका प्रूफ क्या है, उसका सबूत क्या है कि आपके जीवन में वो अलौकिकता के रूप में दिखाई पड़े। कोई भी पौधा जब पैदा किया जाता है तो उसमें पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, उसको सूरज की गर्मी मिलती है, फिर क्या होता है, धीरे धीरे पौधा बड़ा होता है और उसके फल फूल आते हैं। तो हम भी जो ज्ञान और योग को अपने जीवन में धारण करते हैं, अपने जीवन में अपनाते हैं, वो है हमारी अलौकिकता। तो मीठे प्यारे बाबा ने हम बच्चों को यही सिखाया कि बच्चे संसार में रहते हुए तुम जब अपनी दृष्टि वृत्ति वाणी वर्तन को आत्माभिमानी बनाते हो, वही तुम्हारे लिए सेवा का भी साधन बन जाता और बाबा की प्रत्यक्षता का भी आधार बन जाता। मुझे हमेशा ये सुंदर कहानी याद आती है। आप सबको कहानी पसंद है ना? कहानी पसंद है? कहानी सुनते हैं तो नींद भी उड़ जाती है ना? तो कहते हैं कि एक दिन दानव है ना, भारत के भक्ति के शास्त्रों में देवताओं और दानवों की बहुत बातें आती हैं। तो कहते एक दिन दानव सारे मिल करके भगवान के पास गए और कहा कि आप हमेशा ही देवताओं के लिए पक्षपात करते हैं, देवताओं को एक्स्ट्रा मदद करते हैं। तो भगवान कहता है नहीं, मैं किसी को एक्स्ट्रा मदद नहीं करता हूँ, हर एक जिसके योग्य है, जिसके लायक है, उसको वो मिलता है। तो कहा नहीं, ऐसा नहीं है, हम कैसे माने? तो भगवान ने कहा चलो हम आपको एक प्रयोग करके बताएंगे। तो कुछ दिनों के बाद कहते हैं कि भगवान ने, कहानी है कहानी के प्रमाण, कि एक बहुत सुंदर भोजन का आयोजन किया और बहुत सुंदर दो भोजन कक्ष तैयार किए, और एक दानवों के लिए एक देवताओं के लिए, और उनको निमंत्रण दिया, बहुत प्यार से सम्मान से वेलकम किया। फिर जब दोनों ही कक्ष के अंदर एक और देवताएं और एक और दानव, जब वो प्रवेश करते हैं तो प्रवेश द्वार पर एक बहुत बड़ा साइन लिखा हुआ था जिसमें लिखा था कि आपको जितना जो भोजन खाना है प्यार से खा सकते हैं, लेकिन आपको अपना हाथ नहीं मोड़ना है, यहाँ से हाथ मोड़े बिना खाना है। अब आप सोचो कि हाथ मोड़े बिना आप खाना कैसे खाएंगे, ट्राई करके देखो। तो दानव तो एक दूसरे की ओर देखने लगे, परेशान होने लगे, ऐसा हाथ किया ऐसा हाथ किया, ट्राई करने लगे खाने का, ऐसे करूं ऐसे करूं, लेकिन यहाँ से हाथ मोड़ना नहीं था। तो नाराज हो गए, थोड़ा अपसेट हो गए, कहते कि भगवान ने हमको बुलाया तो हमारी मजाक किया, ऐसा क्यों किया? तो वो परेशान हो गए, फिर भगवान के पास गए कंप्लेन लेकर के। तो भगवान ने कहा ठीक है आप मेरे साथ चलो। तो वो देवताओं के कक्ष में गए, वहां से तो आनंद का आवाज आ रहा था, हंसी का आवाज आ रहा था, वहां भी प्रवेश द्वार पर वही बोर्ड लगा हुआ था कि आपको हाथ मोड़े बिना खाना है। तो वो सोच भी पड़ गए, अरे यहाँ तो सब एंजॉय कर रहे, क्या बात है, चलो जाके अंदर देखते हैं। और अंदर जाके देखा तो क्या हुआ कि देवताएं एक दूसरे को खिला रहे थे, कहा हाथ मोड़े बिना हम नहीं खा सकते लेकिन हम आपको तो खिला सकते हैं। तो कहा कि आप हमें खिलाओ, हम आपको खिलाए। आपस में एक दूसरों ने प्यार से बातचीत करके अच्छी तरह से मेल मिलाप कर लिया। तो भगवान ने कहा देखो यही आप दोनों में अंतर है, दोनों की कंडीशन तो समान थी कि हाथ नहीं मोड़ना है, आप परेशान हो गए और वो आनंद ले रहे हैं। तो यही बाबा के ज्ञान का सार है। बाबा कहते बच्चे ज्ञान को जीवन में अपनाना माना, चाहे आप कहां भी रहते हो, लौकिक में रहो अलौकिक में रहो, घर गृहस्थ में रहो सेंटर पर रहो, कहां भी रहो, जहां भी इस बेहद के सुंदर नाटक में आपको पार्ट मिला है वहां रखो, लेकिन क्या करो कि अपने जीवन को, अपने मन बुद्धि और संस्कार, इन तीनों बातों को बार बार ये याद करो कि वो ज्ञान के रंग में रंगी है, वो योग की शक्तियों से परिवर्तित हुई है। क्योंकि ज्ञान योग वो मन की बात है, दिल की बात है, दिमाग की बात है, और उसको उसके प्रभाव में लाना वही हमारी आत्माभिमानी स्थिति है। जैसे बाबा ने हम बच्चों को हमेशा ही ये खास याद कराया है कि जिस दिन हम ब्राह्मण बने, कौन सा पहला पाठ पक्का किया हमने, कौन सा पहला पाठ था, मैं आत्मा हूँ। और बाबा ने कहा अंतिम पाठ भी कौन सा होगा, मैं आत्मा हूँ। तो हमारा ब्राह्मण जीवन की शुरुआत और ब्राह्मण जीवन की संपन्नता, उन दोनों के बीच में क्या है, आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास है। तो आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास माना अलौकिकता का अनुभव, क्योंकि देह है और देह की दुनिया है वो सांसारिक है, वो पार्थिव है, वो क्षण भंगुर है, और मैं आत्मा एक दिव्य चैतन्य शक्ति चमकता सितारा हूँ, जो आत्मा के गुण है शांत स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शक्ति स्वरूप, उसको बार बार दोहराने से हमारे अंदर की जो सिस्टम है वो चेंज होती है। क्योंकि आज तक हमने देखना, सोचना, बोलना सब कुछ देह सही देह की बातों के आधार पर किया, तो हमारी अलौकिकता का आधार है हमारे मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा और हमारे मीठे प्यारी मम्मा का जीवन। हमको एक बात ब्रह्मा बाबा के जीवन की बहुत अच्छी याद आती है, जो एक बार मनोहर दादी ने हमें सुनाया था कि जब यज्ञ की शुरुआत हुई तो आप सबको मालूम है कि कई प्रकार की परीक्षाएं आई, कई प्रकार के विरोध हुए। तो एक बार बाबा के कोई लौकिक रिलेटिव बाबा को मिलने आए और कहा देखो आप कितने बड़े, कितने इज्जत वाले, कितना सुंदर बिजनेस चलाने वाले, और आपने आज ये क्या अपना स्वरूप बना लिया है, क्या ये त्याग तपस्या का रूप बनाया है, क्या समाज में बातें हो रही हैं। तो बहुत कुछ वो लौकिक रिलेटिव बाबा को बता रहे थे, अच्छी बुरी कई प्रकार की बातें। बाबा ने बिल्कुल शांति से सुना, एक अक्षर भी जवाब नहीं दिया। वो व्यक्ति एक दो घंटा कुछ बोल करके चले गए। तो मनोहर दादी कहती थी कि हम लोग सब छोटे थे तो हमने कहा बाबा वो व्यक्ति इतना कुछ आपको बोल के गया, आपने कुछ जवाब ही नहीं दिया। बाबा ने कहा बच्चे उसने अपना काम किया, मैंने अपना काम किया। वो संसार से आया था, संसार की माया में फंसा हुआ था, उसकी बाद में वही तकलीफें थी, उसने मुझे सुनाई, मैं मीठे प्यारे बाबा का बच्चा, मेरे को शिव बाबा ने जो सिखाया है कि बच्चे अशांत को भी शांति गो, तो मैं शांति से सुनता रहा। तो ये जो बाबा ने हम बच्चों को हमेशा कहा फॉलो फादर, हमारे मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा ने अशांति और परेशानी वाली परिस्थितियों के बीच में भी शांति का प्रयोग किया, मीठे प्यारे शिव बाबा में श्रद्धा रखने का प्रयोग किया। तो हम भी जहां भी है सदा मीठे प्यारे बाबा को याद रखें। ऐसे ही मीठे प्यारे मम्मा की भी बात आप सबको पता होगी कि जब दिल्ली के पास में हापुड़ में एक जगह पर बहुत बड़ा हंगामा हो गया था, क्योंकि उस समय पर लोगों को ब्रह्मा कुमारी के बारे में कई प्रकार की अलग अलग मान्यताएं थी, तो उस समय पर मम्मा वहां हाजिर थे। तो वो लोग फिर अंदर आते हैं मिलने के लिए कि हमें बात करनी है आपके मम्मा से, क्या है क्यों आप लोग हमारे से बात नहीं करते हो। तो मम्मा वहां शांति की मूर्ति बन करके बैठे थे, वो लोग आए मम्मा के सामने बैठ गए, मम्मा उनको दृष्टि देते रहे और थोड़ी देर के बाद वो चले गए। बाहर जो विरोध करने वाले खड़े थे उनके वो लीडर्स थे, वो गए बाहर तो कहते आपने क्या बातचीत किया, कहते हमने तो कुछ बात नहीं किया। कहते अरे आपको अंदर भेजा था बातचीत करने के लिए और आपने क्यों कुछ बात नहीं किया। बोलो वहां हम मातेश्वरी के सामने जाकर के बैठे तो इतनी शांति और शीतलता मिली। एक बात हम बताते हैं, ये ब्रह्मा कुमारियां जो भी हो हमें नहीं मालूम, लेकिन उनकी मातेश्वरी साक्षात देवी है, हम उनको नमन करते हैं। तो ये है लौकिक का अलौकिक स्वरूप। जब हमारे मम्मा बाबा में इतनी अलौकिकता, इतनी शांति प्रियता, तो हम उनके बच्चे हैं। आप सब में से जो साइंस जानते हैं वो कहते हैं कि जिसके आप बच्चे होते हैं उसका डीएनए आप में आता है। सुना है डीएनए, उनका जीन्स बोलते हैं, उनका हम हिंदी में कहे अंश बोलते हैं। कहते हैं माँ बाप का रूप बच्चों में आता है, है ना। भी इसका चेहरा ऐसे लगता है जैसे उसका दादा है, उसकी माँ है, उसका पिता है, उसकी आंखें ऐसी है, उसका बोलना ऐसा है, उसका चलना ऐसा है। कई बार हम कहते हैं इसको पीछे से देखो तो लगता है कि उसके काका चल रहे हैं जैसे। तो जिस कुल का व्यक्ति होता है, जिस परिवार का होता है, उस परिवार की असर उसमें आती है। हम भगवान के बच्चे, हम मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा के बच्चे, हम मम्मा के बच्चे, तो हमारा डीएनए क्या है, हमारा अंश क्या है, हमारे कुल की शक्ति क्या है, हमारे परिवार का पावर क्या है, वो है अलौकिकता। तो बाबा कहते बच्चे, जैसे आज भी बाबा ने कहा, स्मृति स्वरूप बनना है। तो जब हम जिस प्रकार की स्मृति रखते हैं, लौकिकता में और अलौकिकता में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, वो अंतर है केवल स्मृति का। क्योंकि जिस स्मृति में आप रहते हैं, जिस संकल्प में आप रहते हैं, जिस प्रकार का आप अपने मन को विचार देते हैं, उस प्रकार से आपके मन से बात बुद्धि तक पहुंचती है, बुद्धि उसका निर्णय करती है, फिर वो कर्म तक पहुंचती है और कर्म से वो संस्कार बनते हैं। तो बात है मन की। जब एक बार हमने मन में पक्का कर लिया कि मैं शिव बाबा की संतान हूं, तो क्या होता है कि वो मन की स्थिति जितनी अंदर अंदर पवित्र बनती जाएगी, शुद्ध होती जाएगी, उतना उतना हमारे अंदर का जो शक्ति का रूप है, एनर्जी है जिसको कहे, कि जिससे सारा फंक्शन होता है। क्योंकि मेन जो स्विच है वो आत्मा की है ना, फिर वो देखने का काम, सुनने का काम, मुख से बोलने का काम करती है ना। दो दिन पहले ज्ञान सरोवर में, दादी कॉटेज में बहुत सुंदर मेला हुआ, मधुर मेला हुआ। किसका? दादी जानकी जी और दादी गुलजार जी का, दोनों मिले। इतना सुंदर वातावरण था। तो हमारी एक बहन ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा दादी गुलजार से कि दादी आपकी जो स्वीट साइलेंस है, मीठी शांति है, आपके चेहरे पर इतनी चमक है, अलौकिकता है, रूहानियत है, उसका आधार क्या है, हम भी ऐसी क्या प्रैक्टिस करें। तो मालूम है दादी ने क्या बताया, क्या बताया होगा सोचो। दादी ने कहा ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये लंबे समय का अभ्यास है। तो बोला किस बात का अभ्यास है? तो दादी ने कहा कि हर चीज में, हर बात का आधार होता है उसकी नींव, उसका फाउंडेशन। तो बोला हमारे ब्राह्मण जीवन की नींव, हमारे ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन मीठे प्यारे बाबा ने और मम्मा ने पांच बातों का डाला। और वो ही बातें, वो सिंपल बातें, देखो आजकल विदेश में कहते बैक टू बेसिक, अपनी बेसिक बातों को पक्की करो। तो कहा पांच बेसिक बातों को हम पक्का करें तो क्या होगा, हमारे जीवन में धीरे 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 अंदर से वो दिव्यता जागृत हो जाएगी। वो बाहर की बात नहीं है, वो अंदर की बात है। तो कौन सी पांच बेसिक बातें हैं, हम सब जानते हैं, हम सब मीठे प्यारे बाबा के बच्चे रोज प्रैक्टिस करते हैं, है ना। तभी तो हम शूद्र से ब्राह्मण बने, तभी तो हम कलयुग से संगम युग पर आए। एक है अमृत वेला, राइट। सिंपल बातें हैं, सिंपल ही हमें सैंपल बनाता है। दूसरा मुरली क्लास, तीसरा ट्रैफिक कंट्रोल, चौथा निमा शाम का योग, और पांचवा रात्रि को बाबा को चार्ट लिख के सोना। अगर अभी मैं किसी को भी पूछूं कि आप ये पांच बातें जानते हैं, तो सभी जानते हैं, राइट? और अभ्यास करते हैं तो सब कहेंगे हम अभ्यास भी करते हैं, तो फिर नंबर वार क्यों बन जाते हैं? जैसे आज के वरदान में भी बाबा ने कहा, क्यों नंबर वार बन जाते हैं? क्योंकि ये सब कार्य करते हुए हमें अपने मन को रोज पावरफुल संकल्प देना है। जैसे अब हम अमृत वेला करते हैं, तो कौन से प्रकार का अमृत वेला हम कर रहे हैं? जैसे एक बार बाबा ने अव्यक्त मुरली में कहा था कि बच्चे अमृत वेले बैठते हैं, लेकिन 80% 90% टाइम तो बाबा को अपने प्रॉब्लम सुनाने में ही लगा देते हैं। क्या बाबा को मालूम नहीं है कि आपके क्या क्या प्रॉब्लम है? तो बाबा कहते, बच्चे अगर आप अपनी बातें मुझे सुनाते रहेंगे तो मेरे से लाइट माइट कब लेंगे? तो जब हम अमृत वेले बाबा के सामने बैठते हैं, तो हमें अपने आप से पूछना है कि क्या मैं बाबा से लाइट माइट लेने के लिए बैठी हूँ? मैं अपनी बैटरी चार्ज करने बैठी हूँ? क्योंकि ये बहुत अच्छा रहस्य है, दिस इज अ सीक्रेट, वेरी गुड की पॉइंट, कि जब हम अमृत वेले मीठे बाबा के पास बैठेंगे, जब बाबा से लाइट माइट लेंगे, वो लाइट माइट क्या करेगी? जो हमारी मुश्किलें, तकलीफें, कंफ्यूजन, कॉम्प्लिकेशन, जो भी बातें हैं उसको खत्म करेगी। लेकिन अगर हम लाइट माइट नहीं लेंगे और वो बातों को बाबा के सामने रख लेंगे, तो आत्मा में वो शक्ति नहीं भरेगी। तो अमृत वेला करना एक बात है, 4 बजे उठ जाना, 4:15 बजे उठ जाना, तैयार हो जाना, क्लास में आ जाना, बहुत अच्छी बात है। बाबा कहते इसके बहुत मार्क्स मिलते हैं। वो तन की दिनचर्या का हो गया, लेकिन मन का, बुद्धि का, एकाग्रता का, बाबा के साथ का संबंध का, वो प्यार की मिठास का, हमारे पास वहां पर विदेश में न्यू थॉट चर्च है, जहां पर वो लोग भगवान को अलग अलग रूप से याद करते, हमारी तरह उन्होंने हमारे से ही सीखा है। जब हम बात करते तो कहते ये हमने इंडियन फिलॉसफी से सीखा है। तो वो कहते हैं जब कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप भगवान को थैंक यू करो, भगवान को कंप्लेन कभी नहीं करो। वहां पर उसका स्पेशल 21 डेज, 31 डेज, 51 डेज थैंक यू का प्रोग्राम चलता है। वो कहते थैंक यू कहने से हम चारों ओर भगवान को आभार मानो, शुक्रिया करो, धन्यवाद करो, तुम अपनी चारों ओर एक नई एनर्जी क्रिएट करते हैं, और वो एनर्जी हमारी मुश्किलात को, तकलीफों को दूर फेंक देती है। क्योंकि जब भी हमारे सामने कोई भी तकलीफ, मुश्किलात, परेशानी आती है, कोई हमारे से कोई ऐसी वैसी बात करता है, हमारा अपमान करता है, हमें कोई ऐसा करता है जिससे हमें दुख होवे, तो वो क्या करता है, हमारी एनर्जी को डिस्टर्ब करता है। हम जानते हैं कि वो कर्मों का हिसाब किताब है, लेकिन कई बार हमारा मन उदास हो जाता है, कितने मेरे कर्मों के हिसाब किताब है, मैं कैसे चुकतू करूं? तो ये जो हमारी शिव बाबा के साथ, सर्वशक्तिवान भगवान के साथ का जो कनेक्शन है, उसमें अगर हम हर बात को ये समझ लेवे कि इससे मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है, उससे मुझे बाबा कुछ आगे बढ़ा रहा है, और हम और भी उसको एक परीक्षा के रूप में देखें और उसमें शुक्रिया करें, तो हमारी सारी एक नई एनर्जी को हम अंदर से जागृत कर पाएंगे। तो हम सब अमृत वेला करते हैं, लेकिन रोज सुबह में एक पावरफुल संकल्प से और बाबा के पावरफुल स्वरूप से अगर हम अमृत वेला करें, तो उससे हमारे अंदर के जो संस्कार और स्वभाव है उसको दिव्य और अलौकिक बनाना बहुत सहज हो जाएगा। एक संबंध लो और एक बाबा का पावरफुल स्वरूप लो। हाँ, रोज एक एक स्वरूप ले सकते हो, या तो एक एक वीक का एक एक स्वरूप बना सकते हो। देखो, आज हमने सुबह में किसी को समझाया कि देखो अभी 3 दिन है, 3 अमृत वेला है ना, बाबा आएंगे उसके पहले, 13, 14 और 15। आप सब प्रयोग करना चाहेंगे, हम आपको सैंपल देवे। तो 13 तारीख को आप सब ये संकल्प कर सकते हो कि बाबा ज्ञान सूर्य है। जब ज्ञान सूर्य से किरणें आती है, आप सब विज्ञान के जो लोग हैं वो जानते हैं ना कि सूर्य की किरणें अगर त्रिपार्श्व कांच में लेते हैं तो वो नीचे पेपर रखो वो भी जल जाता है। तो वो ज्ञान सूर्य बाबा की किरणें मेरी आत्मा में आए और योग अग्नि बनकर मुझ आत्मा को शुद्धि का अनुभव कराए। तो बाबा को पावरफुल ज्ञान सूर्य के स्वरूप में याद करो, एक दिन ऐसा रखो। फिर 14 तारीख को मीठे बाबा पारसनाथ है। जैसे भक्ति में कहते हैं कि पारस के संग में लोहा आ जाए तो लोहा क्या हो जाता है, सोना बन जाता है। सुना है ना ऐसा? अब किसी ने पारस देखा है क्या? नहीं देखा है। ये संगम युग का यादगार है कि हम सब आयरन एज मतलब लोहे की दुनिया से आए हैं। मीठे बाबा के संग का रंग लगता है, हम गोल्डन एज बन जाते हैं, गोल्डन आत्मा बन जाती है। तो बाबा को पारसनाथ के रूप में याद करें कि पारसनाथ बाबा, मैं आत्मा जो हूं जैसी हूं, आपने मुझे अपना बनाया, आपके संग के रंग से मेरी आत्मा भी सोने की बन जाए, गोल्डन बन जाए। पारसनाथ बाबा का वरदान है हम बच्चों को, उसमें लोहे को कुछ मेहनत थोड़ी करनी पड़ती है कहानी के रूप में, वो उसको क्या करना है, केवल पारस के संग में आना है। तो मुझे क्या करना है, मीठे बाबा के संग में आना है, और वो तो मैं आ ही रही हूँ। अमृत वेला उठ करके बाबा के सामने बैठती हूँ और संकल्प से भी बैठ जाऊं। और तीसरा 15 तारीख को देखो बाबा भी आजकल हम बच्चों को क्या कहते हैं कि बच्चे अभी जो भी परिस्थितियां आएंगी, मुश्किलातें आएंगी, ये संगम का अंत, कलयुग का अंत और सृष्टि चक्र का अंत, तीनों का अंत आएगा, है ना? तो उस समय पर हमारा कौन सा स्वरूप चाहिए, कौन सा स्वरूप चाहिए? शिव शक्ति स्वरूप चाहिए। देखो कल हम सब ने मीठी प्यारी दादी चंद्रमणि जी का दिन मनाया। बहुत कम है जिन्होंने चंद्रमणि दादी से पर्सनल मुलाकात की होगी। हमारा ये सौभाग्य रहा कि हम बहुत छोटेपन से दादी से पालना भी लिया, शिक्षा भी लिया, प्यार भी लिया, सावधानी भी दादी ने सिखाई। तो दादी का नाम क्या था? शेरनी शक्ति। केवल शिव शक्ति नहीं, लेकिन बाबा कहते थे दादी थी पंजाब का शेर। तो केवल दादी थोड़ी है, हम सब भी शेरनी शक्तियां हैं, शिव शक्तियां हैं। तो हमारे सामने आने वाली भविष्य की परिस्थितियों के लिए अपने को तैयार करने के लिए रोज अपने आप को याद कराना है कि मैं सर्वशक्तिवान की शेरनी शक्ति शिव शक्ति हूं। तो 15 तारीख को स्वयं भगवान सर्वशक्तिवान पधारेंगे, मीठे प्यारे बाबा पधारेंगे। तो ये संकल्प रखो सुबह से कि मुझे सर्वशक्तिवान बाबा से वो शक्ति लेनी है कि जो मैं शिव शक्ति शेरनी शक्ति बन सकूं। तो ये 3 दिन अमृत वेले के 3 पावरफुल संकल्प, ज्ञान सूर्य बाबा, पारसनाथ बाबा और सर्वशक्तिवान बाबा, ये तीनों स्वरूप को अगर अमृत वेला पूरा 1 घंटा मनन करो। अगर बहुत कुछ मनन करना नहीं भी आता है तो यही संकल्प करो, ज्ञान सूर्य से मैं दिव्य शक्ति ले रही हूं, ज्ञान सूर्य की किरणें मेरी अस्वच्छता को क्लीन कर रही है, मेरी बुराइयों को जला रही है, बस यही संकल्प करो। अगर आपने इतना पावरफुल अच्छी तरह से अभ्यास किया तो एक इंजेक्शन का काम करेगा। वो इंजेक्शन लगाते हैं तो इतना थोड़ा सा ही होता है, लेकिन उसकी दवाई का असर कितना जल्दी होता है, कितना अच्छा होता है। तो ये भी जैसे हमारी आत्मा को इंजेक्शन देगा, ऐसे ही पारसनाथ बाबा को याद करेंगे तो वो गोल्डन स्वरूप का अनुभव करेंगे। और ऐसे सर्वशक्तिवान बाबा से सर्वशक्तियों का अनुभव करेंगे। तो अगर ये तीनों बात को अगर पक्का अनुभव किया तो क्या होगा, लौकिकता खत्म हो जाएगी, समझा? क्योंकि जब आत्मा में इतनी शक्ति आएगी तो आपको मालूम पड़ेगा कि मैंने ऐसा बोला, क्या मुझे ऐसा बोलना चाहिए था, क्या भगवान की संतान ऐसा बोलती हैं, क्या ज्ञान सूर्य से प्रकाश ली हुई आत्मा ऐसा व्यवहार करती है, वो इस प्रकार से कारोबार करती है, नहीं। तो ऑटोमेटिकली जैसे बीज को पानी मिलने से बीज में स्प्राउट आता है, बीज जर्मरित होता है, ऐसे हम भी आत्मा में वो गुण जागृत होंगे। तो अमृत वेला तीन दिन तीन बातों का अभ्यास करेंगे, सभी करेंगे, वेरी गुड। फिर दूसरा है मुरली का पॉइंट, राइट? और मुरली तो सब सुनते हैं, कितने लोग मुरली सुनते हैं मालूम है आपको? 20 लाख से भी ज्यादा लोग मुरली सुनते हैं रोज, 10 लाख से तो ज्यादा हम ब्राह्मण ही हैं, फिर पीस ऑफ माइंड टीवी के द्वारा हजारों लोग सुनते हैं। तो मुरली तो भगवान का महावाक्य, जो हम सब बच्चों को भरपूर करना हमारी आत्मा का खुराक है, रोज सुबह में मिलता है। लेकिन जैसे फिजिकल डाइट के लिए, जैसे शरीर के भोजन के लिए कहते हैं कि भोजन तो सब प्रकार का होता है, लेकिन आपको वो भोजन लेना है जिसकी आपको जरूरत है ना? आपके शरीर को जो सूट करता है, ये आपको आवश्यकता है। ऐसे हमारी आत्मा को भी बाबा तो मुरली का भोजन देता है, लेकिन रोज हमें मुरली में से भोजन को वही ग्रहण करना है जो मेरी आत्मा को आज चाहिए। तो एक है मुरली सुनना और एक है मुरली पढ़ना। जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं वन इज टू रीड द मुरली, मतलब पढ़ना, दूसरा इज लिसन सुनना, और तीसरा स्टडी मतलब अभ्यास करना। तो जब यहाँ मधु बनाते हैं तो कोई भी मुरली मिस नहीं करता है ना, सुबह में हमारा सारा हॉल फुल होता है, तो हम सब मुरली सुन रहे हैं। लेकिन फिर दिन में टाइम निकाल करके हमें मुरली पढ़ना है और फिर उसका अभ्यास करने के लिए पॉइंट्स पिक करना है। आप सबको दादी जानकी का कहानी पता होगी कि दादी जानकी जी जब यज्ञ में आए तो 1936 में यज्ञ शुरू हुआ, लेकिन दादी शायद 1937 में या 1938 में ऐसे कुछ एक डेढ़ साल लेट आए थे। तो दादी को काफी जिसको कहे कि एक जागृति थी कि मैं लेट आई हूँ। तो बाबा ने एक बार दादी को कहा, दादी ने बाबा को पूछा, बाबा मैं तो इन सबसे लेट आई हूँ, मैं क्या करूँ, कैसे मैं अपना मेकअप करूँ, कैसे मैं सबके साथ हो जाऊँ, क्या ऐसा पुरुषार्थ करूँ। तो बाबा ने क्या कहा मालूम है? बाबा ने कहा सब बातों का आधार है बाबा की मुरली। तो मुरली को बार बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो। तो दादी जानकी ने क्या दृढ़ संकल्प किया, मैं 10 बार कहा ना बाबा ने, मैं बार बार पढ़ूंगी मुरली। तो देखो दादी ने केवल मुरली का अभ्यास किया है। आप सबको मालूम भी होगा कि दादी हमेशा अपना ये अनुभव सुनाती है, विदेश में आती है तो खास अनुभव सुनाती है, क्योंकि बड़े बड़े VIPs को मिलती है। जो लोग समझते हैं कि दादी तो विजडम कीपर है, जो जिसकी बुद्धिवानों की बुद्धि है, ऐसी दादी की श्रेष्ठ बुद्धि है, तो कहते कहाँ से आई? तो दादी कहती मैं तो 4 किताब पढ़ी हूँ। आपको मालूम है दादी ने 4 किताब के बाद स्कूल क्यों छोड़ दिया? दादी ये सब बड़े बड़े पॉलिटिशियन लीडर और रिलीजियस लीडर्स को अपनी बात बताती है तो सबको होता है कि ये भगवान क्या सुंदर कार्य करने का एक साक्षात मूर्ति है दादी। तो कहा कि 4 साल चौथे कक्षा में विज्ञान का सब्जेक्ट पढ़ने को आया, तो कहा जो विज्ञान इतना चमत्कारिक होगा कि तुम भगवान को भी भूल जाएंगे। दादी कहती मुझे ऐसा कोई विज्ञान नहीं पढ़ना है जो भगवान को भुला देवे। दादी कहती मैंने स्कूल ही छोड़ दिया। लेकिन इस गॉडली यूनिवर्सिटी में, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में दादी ने अच्छी तरह से भगवान का हाथ भगवान की मुरली को पकड़ के रखा। तो जब दादी इतना समय मुरलियां पढ़ती रही तो दादी की बुद्धि में वो दिव्यता आ गई, मुरलियों की शक्ति आ गई। तो दादी हम सबको यही बात बताती है, जैसे अभी हमारा 35+ ईयर्स जो ज्ञान में थे विदेश के भाई बहने, तो उन सबसे दादी मिल रही थी। तो हमने कहा दादी आपकी हमारे लिए क्या आश है, आपने तो हमें इतनी पालना देकर इतने प्यार देकर के हमको, कुछ भी हमारी गलती हो कोई ऐसी वैसी बात हो आपने हमारे लिए हमेशा विशाल दिल रख करके अपना बना के रखा, अब आपकी हमारे लिए क्या इच्छा है क्या आशा है। तो दादी ने कहा एक ही बात। कौन सी बात? बाबा की दिल में सच्चाई सफाई से याद रखो और बाबा की मुरली से प्यार रखो। तो मुरली और बाबा की याद सच्चाई से करने में इतनी शक्ति है जो सब बातों का निवारण कर देती है। आप प्रयोग करके देखना, रोज सुबह में मुरली पकड़ो, दोपहर में मुरली पकड़ो और शाम को मुरली पकड़ो। और एक बात जो हम आजकल अभ्यास करते हैं और हमारे वहां पर आने वाले भाई बहनों को भी अभ्यास कराते हैं, वो है कि रोज एक पुरानी अव्यक्त मुरली 70s या 80s की, वो 20 साल की मुरलियों में से कोई भी एक मुरली 71 से लेके 90 तक, मतलब वो 20 साल की मुरलियों में बाबा ने जो खजाना दिया है हमारी धारणाओं का, वो बहुत निराला है। तो हम वहां पर ये अभ्यास करते हैं कि मुरली का कोई भी पेज खोलो, या तो आप एक एक दिन का मुरली पढ़ खोलो या कोई भी एक पेज खोलो और केवल आधा पेज मुरली पढ़ो, पुरानी 20 साल की अव्यक्त मुरलियों में से आधा पेज, मैक्सिमम 1 पेज, और वो मुरली एक एक शब्द को, एक एक महावाक्य को अपने पुरुषार्थ का आधार बनाओ। उसमें से देखो एक बाबा का दिया हुआ वरदान, एक बाबा का दिया हुआ इशारा, एक बाबा की दी हुई सावधानी, उसको पकड़ो और उसको बार बार लिखो। क्योंकि मनोविज्ञान में भी कहते हैं कि जो बात आप लिखते हैं वो आपकी आत्मा की कॉन्शियसनेस में, आपकी चेतना में, गहराई में, अभ्यास में आ जाती है, गहराई के अनुभव में आ जाती है। तो रोज हमें लिखने का अभ्यास जरूर करना है। तो मुरली का अभ्यास माना लिखने का अभ्यास। क्लास में मुरली सुनना वो तो 25% प्राप्ति है, पढ़ना वो दूसरा 25% प्राप्ति है, लेकिन लिखना वो दूसरा 25% प्राप्ति है। और फिर उसी मुरली के वो पॉइंट को ट्रैफिक कंट्रोल में रिपीट करो। हम ट्रैफिक कंट्रोल होता है, हम शांत हो जाते हैं, तो फिजिकली तन से तो हम शांत हो गए, स्थिर हो गए, कुछ काम कर दिया थे रख दिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन मन कहाँ है? तो बाबा हमेशा कहते थे बच्चे ज्ञान की पॉइंट्स को तार बनाओ, तब एक तार होगा, एक रस होगा। तो तार कैसे बनाए? जो पॉइंट लिया उसको सारे दिन के ट्रैफिक कंट्रोल में बार बार याद करते रहो। तो अमृत वेला और उसका कनेक्शन मुरली, मुरली का कनेक्शन ट्रैफिक कंट्रोल से हो जाएगा। और फिर उसी को, एक बात को पक्का करो नीमा शाम के योग समय पर, मुरली की ही बात को पक्का करो और फिर रात को उसका चार्ट लिखो, तो पांचों ही बात कितनी पक्की हो जाएगी। तो ये जो बेसिक 5 बातों को अगर हमने पक्का कर लिया तो फिर वो ऑटोमेटिक हमारे दृष्टि वृत्ति वाणी वर्तन को रंग लगाएगी। जैसे हमारे पास कई भाई बहने आते हैं, वो कहते हैं कि जब से हमने योग करना शुरू किया, बाबा को याद करना शुरू किया, बाबा की मुरली का अभ्यास शुरू किया, तो आज तक जो बातें हमें परेशान करती थी अब वो नहीं कर रही है, क्योंकि वो आत्मा में शक्ति आ गई कि कोई भी चीज हमें परेशान क्यों करती है। लौकिकता माना परेशानी, मन की अशांति, दिल की घबराहट, निराशा, उदासीनता, ये सब है लौकिकता। फिर उससे हम डर जाते, फिर हम घबरा जाते, फिर हम दौड़ भाग करते, फिर हम गलत निर्णय ले लेते, ये सब लौकिकता का परिणाम है। लेकिन जब हमें विश्वास हो गया कि बाबा मेरा साथी है और बाबा का हाथ पकड़ने से सब काम ठीक हो जाएंगे। देखो भक्ति मार्ग में भी कहा कि जब कृष्ण का जन्म हुआ था, जब उसको नंद बाबा अपने सिर पर टोकरा लेकर के जा रहे थे, नदी में बहुत पानी आ रहा था, केवल वो कृष्ण का पांव टच हुआ और रास्ता निकल आया। ये किसका यादगार है? हमारा यादगार है कि हमारे सामने कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन एक मीठे बाबा की याद रास्ता निकाल देती है। तो कोई भी बात में हमें हमेशा याद रखना है कि हम कौन हैं और किसके हैं, कहां से आए और कहां जाने वाले हैं। तो जब हम बार बार ये संकल्प करेंगे तो ये बेसिक बातों को पक्का करने से हमारा ऑटोमेटिक उन्नति होना, ऊंचाई में जाना, आगे बढ़ना सहज हो जाएगा। तो ये बात बाबा हम बच्चों को ऐसी पक्की कराते हैं। बाकी तो देखो, हम सब यहाँ मीठे प्यारे बाबा के बेहद के यज्ञ में आए हैं। विदेश में जब भी हम वहाँ के आईपीस और वीआईपीस को मिलते हैं, उनको ये बात बहुत अच्छी लगती है। कौन सी बात? कि हम कभी भी किसी से कुछ भी मांगते नहीं हैं। इवन हम कितनी भी सेवा देते हैं, हमारे पास कभी जब दादियां आती है, बड़े भाई बहने आते हैं, हम वहाँ प्रोग्राम रखते हैं, तो वहाँ हम हमेशा ही, दादी जानकी ने हम सबको सिखाया है कि अन्न का मन पर प्रभाव पड़ता है, सबको भोजन खिलाओ। तो हमारे कोई भी प्रोग्राम होंगे उसमें हम थोड़ा सा भी, सादा सा भी भोजन जरूर खिलाते हैं, और हम कभी भी कुछ चार्ज नहीं करते हैं। वो कहते जब हम डिनर का या लंच के साथ का प्रोग्राम रखते हैं, हम तो चार्ज करते $20, $30, $50, आप तो कुछ भी चार्ज नहीं करते, आपका काम कैसे चलता है? हम कहते हमारा काम है ही नहीं, ये तो भगवान का काम है और भगवान चला रहा है। कहते हम भी चर्च में भगवान का काम करते, लेकिन पता नहीं क्यों हमारा काम ऐसे नहीं चलता है। हमने कहा नहीं, ये जब हम अंदर में संकल्प रखते हैं कि मीठे प्यारे बाबा का ये कार्य है और आने वाली आत्माएं वो भगवान के अन्न का दाना लेकर के अपना भाग्य बनाएगी, वो भाग्य बनाने का संकल्प बहुत बड़ा काम करता है। तो इसलिए हम हमेशा याद रखते हैं कि सुदामा ने चावल मुट्ठी दिए लेकिन उसको महल मिले। हम सब सुदामा हैं, हम सब सुदामा हैं ना, इस यज्ञ की रक्षा करने वाले, इस यज्ञ को चलाने वाले, हम सबकी चावल मुट्ठी से भगवान का यज्ञ चलता है। तो ये बात हमेशा याद रखें कि हम वहाँ दूर देश में भी हैं, हमारे पास आने वाले भाई बहने भी कम होते हैं, लेकिन बाबा ऐसे काम कराता है, इवन कांटेक्ट वाली, संबंध संपर्क वाली आत्माएं भी इतना मदद करती है कि बात मत पूछो। आप सबको बहुत खुशी होगी, मैं एक अच्छी प्रैक्टिकल कहानी बताती हूँ, सत्य घटना बताती हूँ। हमारे पास एक बहुत बूढ़ी माता थी, बहुत अच्छी क्रिश्चियन माता थी, लेकिन वो हमको जानती थी कोई न कोई इंटरफेथ प्रोग्राम से। तो उसको जब हमको मिली तो बहुत शांति का अनुभव हुआ, बाबा ने कराया। तो फिर वो हमारे पास हर संडे को आती थी, हम मेडिटेशन कराते थे कॉन्टेक्ट सोल्स का, तो उसको बहुत अच्छा लगता था। फिर उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी, वो बीमार हो गई। एक दो बार उसके फ्रेंड्स ने हमें बताया कि सिस्टर हंसा वो आपको याद कर रही थी, आप उनको मिलके आना। तो एक दो बार हम उसको मिलके भी आए। फिर उसकी एक बार एक फ्रेंड ने फोन किया कि इस बहन ने शरीर छोड़ दिया है। हमने कहा ठीक है, जब उसकी मेमोरियल सर्विस हो, जब उसका अंतिम संस्कार के बारे में वहां पर जो क्रिया करते हैं उसको मेमोरियल सर्विस बोलते हैं, तो कहते हमको बुला देना। तो कहते हाँ, उसने खास बोला था उसके रिलेटिव्स को कि जब मैं शरीर छोड़ूं तो सिस्टर हंसा को जरूर बुलाना। तो हम वहां गए, मेडिटेशन कराया, बहुत अच्छा लगा, उसके परिवार वाले भी बहुत खुश हो गए। फिर हम तो करा करके आ गए, तो ज्यादातर तो कभी हम किसी के मेमोरियल सर्विस में जाते हैं तो वो बाबा को यज्ञ के लिए चेक भेज देते हैं। तो फिर उस टाइम तो उसके रिलेटिव्स को हम जानते नहीं थे, उसने हमें कुछ नहीं भेजा। हमने कहा चलो कोई हर्जा नहीं, वो बेचारी बूढ़ी माता थी, वो कभी भी बाबा के घर आती थी तो हमेशा बाबा के बॉक्स में कुछ डाल के जाती थी। फिर क्या हुआ, 2-3 मास के बाद यहाँ मधुबन में कोई अच्छा प्रोजेक्ट हो रहा था, तो हमने कहा बाबा हमें भी कुछ भेजना है। लेकिन उस समय पर हमारे पास भी कुछ प्रोजेक्ट थे, तो हमारे पास एक्स्ट्रा बजट नहीं था, लेकिन हमको संकल्प था कि बाबा आप जरूर कोई न कोई आत्मा को निमित्त बनाएंगे। तो एक दिन सुबह में हमारे पास मेल आया, मैंने खोला, उसमें चेक आया, बहुत बड़ी रकम का चेक आया। हमने कहा ये किसका है, फिर मैंने पढ़ा वो बूढ़ी माता जो केवल संबंध संपर्क वाली थी, उसका विल बनाया था, उसके पास अच्छा धन था तो उसने विल बनाया था, उसने लिखा इतना परसेंटेज ब्रह्मा कुमारी को भेजा जाए। ये ऊपर वाला, मैंने कहा देखो इसने शरीर छोड़ करके भी अपना कितना बड़ा भाग्य बना लिया। वो पूरा चेक हमने मधुबन भेज दिया, क्योंकि मधुबन का ही कुछ काम था, बाबा ने उसके लिए ही भेजा था। तो कई बार हम संकल्प करते हैं कि बाबा हमें कुछ करना है आपके यज्ञ के लिए, इतना विशाल यज्ञ जहां से हमें तन की मन की जीवन की जन्म जन्मांतर की प्राप्ति होती है, वो सारा यज्ञ हम सुदामा हम सब बाबा के बच्चों की मुट्ठी से चलता है। तो ये हम हमेशा याद रखें कि जब भी हम मधुबन आते हैं हम एक अच्छा संकल्प लेकर के आए, जिससे हमारे अंदर के सारे कर्मों के हिसाब किताब की जो रेखाएं हैं, हिसाब किताब के चक्र हैं, वो चेंज हो जाएंगे और नया सुंदर भाग्य का चक्र शुरू होगा। तो ये हम सब हमेशा याद रखें कि शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम ब्राह्मण बच्चों को निमित्त बना करके किस प्रकार से ये विशाल यज्ञ रचा है, जो सारे विश्व को एक नई श्रेष्ठ पवित्र पावन दुनिया का वरदान मिलने वाला है। तो लास्ट में मैं आप सबको यही रिक्वेस्ट करूंगी कि रोज हमें 15 मिनट कम से कम पूरे विश्व के ग्लोब को नजरों के सामने रख करके सारे विश्व की आत्माओं को लाइट माइंड देना है। देखो हम यहाँ इतना शांति से बैठे हैं, बड़े प्यार से बैठे हैं, लेकिन विश्व में देखो कई ऐसे देश है कि जहाँ पीने का पानी नहीं मिलता है, जहाँ खाने की बात तो दूर रही, पीने का पानी तक नहीं है। ऐसे कई अशांत परेशान कई प्रकार की असुविधा वाली जीवन जीने वाली आत्माएं हैं, हम भगवान की छत्र छाया के नीचे हैं। तो हमने भगवान को पहचाना, मुझे बहुत अच्छी कहानी याद आती है कि एक राजा एक बार तपस्या करने जाता है, तो बताते हैं कि उसको भगवान का साक्षात्कार होता है, तो इतना दिव्य सुंदर अलौकिक स्वरूप, तो बहुत प्रसन्न हो जाता है, कहते भगवान मैं तो धन्य हो गया, मेरा तो कल्याण हो गया। तो कहते भगवान कहते कि मांग, मैं तुम्हें क्या दूं, मैं भी तुम्हारी तपस्या से बहुत खुश हो गया हूं। तो कहा मैं तो राजा हूं, मुझे तो कुछ कमी नहीं है, लेकिन हर एक राजा के मन में ये संकल्प होता है कि सारी प्रजा वही पाए जो राजा ने पाया है, तो कि मैं चाहता हूं कि मेरी सारी प्रजा भी आपका दर्शन करे। तो भगवान ने कहा देखो मेरा दर्शन करने के लिए तो व्यक्ति के अंदर में तमन्ना होनी चाहिए, एक अंदर की झंखना होनी चाहिए, तभी वो मेरे तक पहुंच सकता है। लेकिन राजा ने कहा नहीं, देखो भगवान से मिलने तो सभी की तमन्ना और झंखना होती है, बस आप मुझे टाइम दो, मुझे मेरी प्रजा को आपका दर्शन कराना है। एनीवे राजा की बात का स्वीकार करके भगवान ने कहा मैं तो तुम्हें परमिशन देता हूँ, लेकिन देखो वही पहुंचेगा जिसकी तमन्ना और तकदीर दोनों है। एनीवे राजा अपने राज्य में वापस आता है, वो सारे प्रजाजनों को बताता है कि फलाने दिन पर फलाने समय पर फलानी जगह पर हम जाएंगे भगवान का दर्शन करने। सब तो बहुत खुश हो गए, ऐसा अगर आपको कोई कहे तो, जैसे अभी हम आज यहाँ पहुंच गए है ना भगवान का दर्शन करने, लेकिन कौन पहुंच सकता है। तो ये कहानी बहुत अच्छा मैसेज देती है कि सब लोग गए तो आधे एक चौथा रास्ते पर पहुंचे, 1/4 जर्नी पर पहुंचे, तो वहां पर बहुत सुंदर सोने तांबे का पाई तांबे का पहाड़ था, बहुत सुंदर तांबे के सिक्के पड़े थे। तो आधे 1/4 लोग वहां रुक गए, कहते इतने सुंदर तांबे के सिक्के हैं, हमें तो लेके घर जाना है, हमें तो आगे नहीं आना है। तो राजा ने समझाने का ट्राई किया लेकिन नहीं माने। फिर आगे गए, आधे रास्ते पर वहां चांदी के सिक्कों का बहुत बड़ा ढेर था, तो आधे लोग वहां रुक गए चांदी का सिक्का लेने के लिए। फिर आगे गए तो वहां पर सोने के सिक्के का ढेर आया, तो सारे ही लोग वहां रुक गए, कहते हमें आगे नहीं आना है। फिर राजा के साथ केवल उसकी रानी चली, उसने कहा कम से कम मेरी रानी को तो लेके मैं जा रहा हूँ। तो थोड़ा ही वहां पहुंचने ही वाले थे जहां भगवान से मुलाकात होने वाली थी, तो वहां हीरो का ढेर आया। तो क्या हुआ, रानी भी वहां रुक गई है। तो आखिरी राजा कहता है कुछ भी हो जाए मैं तो अकेला जाऊंगा ही। तो वो राजा तो भगवान के पास गए, तो भगवान ने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया और कहा धीरज रखना, आज नहीं तो कल और भी लोग पहुंच जाएंगे। ऐसे हम सब भी संसार में आज कितने तांबे के सिक्कों की चमक है, चांदी के सिक्कों की चमक है, सोने के सिक्कों की चमक है, सब छोड़ के आए हैं ना, क्योंकि हमें मालूम है कि भगवान को मिलना उस सबसे ऊंचे से ऊंची बात है। तो ये जो 2-4 दिन हम यहाँ पर हैं, हम कोई सोशल गैदरिंग में नहीं आए हैं, हम किसी की शादी मुरादी में, किसी की बर्थडे में नहीं आए हैं, हम अपनी शादी कर रहे हैं बाबा से, हम अपनी बर्थडे मना रहे हैं बाबा से, है ना। तो ये 3-4 दिन बस ऐसा अनुभव करे, ऐसी शक्ति पाए, ऐसी अपनी आत्मा में बल भरे। ऐसा नहीं यहाँ आए हैं चलो हम बाहर के स्टोर में जाए खरीदारी कर ले, फलाने से बात कर ले, फलाने से कर ले, वो सब तो होता रहता है और वो करना भी कभी कभी पड़ता है, तो कर लो, लेकिन वो 15 तारीख के बाद करना है। और अगर दिन में भी करना पड़े तो नक्की करो एक आध घंटा थोड़ा कारोबार करना है, फिर बाकी का समय पर क्या करो, अर्जुन की तरह एकाग्रता धारण करो, अर्जुन की तरह एकाग्रता धारण करो। ये संकल्प कर लो ये 3 दिन मैं और मेरा बाबा। देखो दादियों की इतनी उम्र और इतनी शारीरिक स्थिति हो तो भी भगवान आता है, तो बस मुझे ऐसी शांति पानी है, ऐसा आनंद पाना है, ऐसा सुख पाना है जो 21 जन्म चले, खजाना जमा करना है ना। बाबा हमेशा यही कहते हैं, ये जो मैंने आपको 70s और 80s की अव्यक्त मुरलियां बताई, क्योंकि उसमें बाबा ने बार बार कहा है बच्चे अपने कर्मों का खाता जमा करो, दुआओं का खाता जमा करो, भाग्य का खाता जमा करो। जब जमा कब होगा, जब हम एकाग्रता से बैठेंगे। इसलिए गीत गाते ना, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। तो ये एक ऐसा पावरफुल संकल्प आज से ये कर लो, मैं कौन हूं, अर्जुन हूं, जिसने किसको देखा, एक भगवान को देखा, इस किसी को नहीं देखा। तो ये एक पावरफुल संकल्प केवल 3 दिन के लिए, फिर तो हमारा कारोबार चलता रहता है, आप भी जाएंगे वापस तो आपको संसार भी चलाना है, परिवार भी चलाना है, लेकिन शक्ति लेके जाएंगे तो आपका परिवार सहज रीति चलेगा। इवन यहां बैठे बैठे बाबा से लाइट पॉइंट लेंगे तो वहां की कोई समस्या होगी ना, वो भी दूर हो जाएगी, ये विश्वास रखेंगे तो बहुत बड़ी प्राप्ति होगी। तो जो भगवान के पास आए हैं इतना खजाना लेने, तो उसको अच्छी तरह से भरपूर करना है अपने आप को। अच्छा, ओम शांति। अभी कुछ सेकंड के लिए हम बाबा की याद में बैठते हैं। पहले अपने आप के मन और बुद्धि को प्रकृति में एकाग्र करें और दूसरा थोड़े गहरे श्वास ले रहे, तीसरा अपने शोल्डर्स को लाइट कर देवे, ढीला छोड़ देवे, और अब अपने आप को संकल्प देवे मैं एक श्रेष्ठ आत्मा, उच्च आत्मा, महान आत्मा, अनेक जन्मों के भक्ति का फल पाने के लिए भाग्य विधाता भगवान के सामने आई हूँ। आज मीठे प्यारे श्री बाबा, ब्रह्मा बाबा और सभी हमारी महान बाबा द्वारा निमित आत्माओं से दृष्टि और शक्ति लेते अपने आप को दिव्य और अलौकिक स्वरूप में स्थित होने का दृढ़ संकल्प देती हूँ। और ये 3 दिन विशेष अपनी दिल दिमाग को मीठे प्यारे बाबा को समर्पण कर अपनी स्थिरता प्राप्त करती हूँ। और दिल से बाबा का शुक्रिया करती हूँ। बाबा आपने मुझे अपना बनाया, और मैं औरों को भी इस मीठे बाबा का अनुभव कराऊं, साक्षात्कार कराऊं, मेरी दृष्टि वृत्ति के द्वारा। ओम शांति।